हमें जो डेथ का टोटल एनवेलप जो है एक्सेस डेथ का 19 के मुकाबले 20, 19 में नहीं था कोविड, 20 में आ गया, तो 4.74 लाख का है, लेस देन 5 लाख है। फिर भी ऐसी फिगर जो है 9 गुना 10 गुना बताना ये ठीक बात नहीं है।
मेरा ये मानना है कि ये डेटा ठीक नहीं है। हमारा एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है बर्थ्स और डेथ रजिस्ट्रेशन का, आरजीआई का, वो कई डिकेड से चला आ रहा है और उसमें डेथ्स और बर्थ्स बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर होती हैं।
वी हैड कोविड डेथ्स अकरिंग एंड वी डिड नॉट हैव अ डेफिनेशन ऑफ डेथ, नॉट इवन द WHO हैड एनी डेफिनेशन फॉर डेथ आफ्टर COVID-19। व्हेन टिल आई बिकम पॉजिटिव टुडे आई डाई आफ्टर 2 weeks विल इट बी कोविड डेथ, आई डाई आफ्टर 2 months विल इट बी कोविड डेथ, आई डाई आफ्टर 6 months विल इट बी कोविड डेथ।
Numbers are all sometimes controversial. We have to recognize that the estimates are an approximation of a reality.
नमस्कार। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 3,545 नए मामले सामने आए हैं, कल से 8.2% ज्यादा। दिल्ली में भी संक्रमण दर बढ़कर 6.42% पर है। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन कोरोना नियमों में फिलहाल कोई सख्ती नहीं है। शायद नियमों का पालन करते करते लोग ऊब चुके हैं, थक चुके हैं। सरकारों को अपने काम करना है, नौकरी पेशा के लिए काम पर निकलना जरूरी है, तो मजदूरी करने वाले के लिए भी रात की रोटी का इंतजाम करना जरूरी है। पिछली कोरोना की लहरों में कितनी मृत्यु हुई, अस्पतालों में जगह नहीं मिली, ना शमशानों में जगह थी, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिला तो कहीं स्ट्रेचर नहीं था, परिवार अनाथ हो गए थे। त्रासदी झेल रहे परिवारों के राज्यों में तो चुनाव भी हुए उसके बाद, और जिन सरकारों पर कोरोना काल में बद इंतजामी के आरोप लगे वे जीत भी गए और ज्यादा बहुमत से चुनाव जीत गए। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ने घटने की चिंता ना के बराबर दिख रही है। लेकिन कल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आंकड़े जारी कर कहा है कि भारत में आधिकारिक संख्या से कई गुना ज्यादा कोरोना काल में मृत्यु हुई। आज हमारी कोशिश है कि समझे कि आंकड़ों में इतना फर्क कैसे बताया जा रहा है, साथ ही कोशिश की इस बहाने अपनी स्वास्थ्य प्रणाली पर गौर कर लें, उसे कुछ और मजबूत कर लें, सरकारों का उस ओर ध्यान खींच लें। भले ही सरकार का स्वास्थ्य बजट घटा हो, लेकिन उस त्रासदी को झेल चुके लोगों के घावों पर कुछ मरहम और कोरोना वॉरियर्स के अनुभवों से कुछ सीख कर जरूर अपने साथ आज समेटे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दावा किया है कि भारत में कोरोना से अतिरिक्त 47 लाख मौतें हुई, जबकि भारत में COVID-19 से कुल मौतों का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 5,20,000 के करीब है, यानी भारत के आधिकारिक आंकड़े से करीब 10 गुना ज्यादा। WHO ने कल ये भी दावा किया कि दुनिया भर में कोरोना से साल 2020-21 में सभी देशों की तरफ से दिए गए आंकड़ों से 1,49,00,000 ज्यादा मौतें हुई। उसका कहना है कि ये 84% मौतें केवल दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका में हुई हैं। तो भारत सरकार ने क्या कहा है जब से कल से WHO का ये आंकड़े आए हैं? भारत ने आंकड़ों पर जताई है आपत्ति, कहा है कि डेटा कलेक्शन, डेटा सोर्स और मॉडल और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। भारत सरकार ने नवंबर से 10 चिट्ठियां लिखी हैं WHO को, WHO की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। 17 राज्यों के डेटा के आधार पर यह आंकड़ा जारी किया गया है। भारत सरकार इस मुद्दे को WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड में उठाएगी। जब WHO के DG भारत आए थे, भारत सरकार ने अपनी चिंता जाहिर की है। WHO के DG ने तब कहा था कि हमारी टेक्निकल टीम इसको देख रही है। तो इस मामले में आज राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है, उन्होंने लिखा है कोविड महामारी के कारण 47 भारतीय की मौत हुई है, 8.8 लाख नहीं जैसा कि सरकार ने दावा किया है। विज्ञान झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलते हैं। इन उन परिवारों का सम्मान करें जिन्होंने अपनों को खोया है। अनिवार्य रूप से 4 लाख रुपए मुआवजे के साथ उनका समर्थन करें। तो हमारे साथ खास मेहमान हैं शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ से, बंजोत कौर वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं द वाय साइंस की, इन्होंने बहुत लेख लिखे हैं कोविड काल के दौरान, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी अध्यक्ष हैं हमारे साथ शहीद भगत सिंह सेवा दल के। और शंटी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों का दाह संस्कार किया था, एक तरह से माना जाए तब संख्या नहीं थी। शंटी जी पहले मैं आप ही से शुरू करूंगी, आप एक तरह से कोरोना वॉरियर हैं, और आपसे क्योंकि एक WHO का आंकड़ा आया है वो कह रहे हैं कि भाई आधिकारिक जो भारत ने आंकड़े दिए हैं उससे कहीं ज्यादा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर?
देखिए, सबको अपने अपने स्टेट्स का पता होता है, मैं बैठा हूं राष्ट्रीय राजधानी में और दिल्ली का एक कोना शाहदरा मैंने संभाला था, सीमापुरी शमशान घाट, और नहीं भूलता मुझे वो दिन कि 26 अप्रैल का दिन था और 176 डेड बॉडी मैंने अपने हाथ से करी थी। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात बता रहा हूं मैं आपको,
एक
वो कहर, वो कहर जिन परिवारों पे बरपा है मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक एक परिवार से 3 से 4 लाशें भी हम उठा के लाए हैं किसी किसी घर से, तो उसको भूलना और उसको भूल जाना सारी जिंदगी में मैं समझता मुनासिब नहीं है। और आज हम अपने आंकड़ों को कहीं भी इधर उधर करते रहे लेकिन दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को स्ट्रेचर जैसी चीज में नसीब नहीं हुई, उस समय लकड़ी नसीब नहीं हुई, कई जगह कफन नसीब नहीं हुआ, डेड बॉडी वाली किट नसीब नहीं हुई, बहुत भयंकर हालत थी।
आप शब्दी जी कह रहे हैं कि एक दिन में इतनी मृत्यु हुई?
जी, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं आपको, जो मैं ऐसे 70, 75, 80, 100 तक करता रहा, लेकिन 26 अप्रैल वाले दिन बड़ा भयंकर दिन था। और 3 शमशान घाट का आंकड़ा बोलूं मैं, सीमापुरी, गाजीपुर और कड़कड़डूमा, 477 डेड बॉडी एक दिन में थी, वो 26 अप्रैल का दिन था।
बिल्कुल शरद जी, मैं आपके पास आऊंगी अब क्योंकि कुछ तस्वीरें लखनऊ से भी आई थी, उत्तर प्रदेश से आई थी, नदियों के घाटों से, गंगा के तटों से आई थी। आपका क्या आंकलन है अब जब WHO का ये बात कहना आई है, क्योंकि कई ऐसी चीजें भी हैं, भारत सरकार ने भी अपना जवाब एक तरह से दिया है, सरकार ने तमाम सवाल उठाए हैं, ये कहा कि भाई 17 राज्यों का मोटा मोटा एवरेज लेकर आपने कैसे कह दिया, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया थी जब WHO ने ये फिगर्स जारी किए?
देखिये, ये बड़ा सरकार के लिए तो ये लगी रहा था कि सरकार को तब बड़ी तकलीफ होगी जब सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसको छुपाने की। इसके मैं अभी इसका मैं डिटेल एक्सप्रेशन वो दूंगा, लेकिन यही वही WHO है जिससे के जरिए से इन्होंने किसी तरीके से एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन जहां तक यूपी का सवाल है लिखवा लिया, और आज जब तब उसकी बड़ी वाह वाह करी और खूब उसको प्रोजेक्ट किया कि देखिए हमारी तो WHO तारीफ कर रहा है, अब जब कलई खुली है तब इनको बड़ा बुरा लग रहा, और नेचुरली यूपी रिफ्लेक्ट करता है नेशनल लेवल पे, और यहां पे तो ये आलम हुआ है लखनऊ और आसपास जो इन्होंने जो ये फिगर्स देखते थे, मैं खुद पर्सनली मॉनिटर करता था कि कितनी फिगर्स ये जारी कर रहे हैं, एक रोज प्रेस रिलीज जारी होता था, और जो मैक्सिमम इनकी जो एवरेज जो था 26, 30, 35 जो यहाँ का मेन शमशान घाट है, मैं अभी एक उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 बड़े शमशान घाट हैं और 3 बड़े कब्रिस्तान, और उसमें जिस तरीके की जो फिगर्स आती थी इनके 34, 35, उस दिन जब मैं क्रॉस चेक करता था शमशान घाट से, ये तो सरकारी प्रेस नोट जो गवर्नमेंट इशू कर रही है, जब 34 बोलते थे तो सिर्फ एक शमशान घाट में 110, 120 लाशें जल चुकी होती थी, और वो सरकारी रिकॉर्ड है। फिर इन्होंने जो और डेली का कंपैरिजन देखते तो मतलब ये थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं था कि आपने 30 के जो है 50 के 30 कर दिया आपने, यहां 30 मतलब जब वो 34 दिखा रहे हैं पूरे लखनऊ जिले के, टोटल फिगर होती थी 350, इट वॉज 10 times, 20 times मोर, कभी कभी 500 फिंगर्स गई यहाँ पे। और जब मीडिया ने, लोकल मीडिया में कुछ लोगों ने हिम्मत करी, वरना तो आप जानते हैं आजकल मीडिया का क्या हाल, जब उन्होंने हिम्मत करके एक दिन जो यहाँ मेन शमशान घाट है जिसे भैंसाकुंड कहते हैं, वहां एक अलग से एंक्लोजर बना दिया गया था कोविड बॉडीज के लिए, एक एरिया पूरा मार्क कर दिया था नदी के किनारे, वहां की फोटोग्राफ एक बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफ खींच करके लगाई, उस ऐसा लग रहा था जिस जंगल में आग लग गई और लाइन से लाशें इकट्ठी, वहां टोकन बढ़ते थे, लोगों को एक एक दिन डेढ़ डेढ़ दिन इंतजार करना पड़ता था अपने नंबर के लिए, जब वो फोटोग्राफ छपी तो उसका नतीजा क्या हुआ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे दिन से वहां मीडिया की एंट्री बंद कर दी और चारों तरफ टिन शीट्स लगा दी गई जिससे कोई दूर से देख ना पाए, फोटो भी ना खींच पाए। और बाहर आपने कभी दुनिया में नहीं कहीं सुना होगा कि शमशान घाट के बाहर ये लग जाए, नो एडमिशन विदाउट परमिशन।
बिल्कुल, मुझे हमारे दिवंगत
कमाल की रिपोर्ट थी, बिल्कुल बिल्कुल,
सहयोगी कमाल खान ने वो तमाम रिपोर्ट्स दिखाई थी और उनपे खूब चर्चा भी हुई थी। मैं अब बंजोत आपके पास आऊंगी, और आपने तमाम लेख लिखे हैं इस मामले पे और आपने कई इलाकों का देश भर में दौरा किया है, आपका क्या आंकलन है, आपके मैं जानना चाहूंगी कि आपकी क्या राय बनती है इस मामले में।
निधि, आपके बाकी दो मेहमानों ने अपने इम्पीरिकल एक्सपीरियंसेस के आधार पे बताया कि कैसे जो रोज का मौत का आंकड़ा इशू होता था और जो सच्चाई थी धरातल पे, उसमें बहुत फर्क था। इन एक्सपीरियंसेस को अगर छोड़ भी दे और उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जाए जिसकी बात WHO कर रहा है, तो वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। आपने बात कही 17 राज्यों की कि कैसे सिर्फ 17 राज्यों के आधार पे देश भर का आंकड़ा इशू किया जा सकता है। पहले हमें यह समझना होगा कि मौत का आंकड़ा इकट्ठा कैसे होता है इस देश में। मौत का आंकड़ा रिफ्लेक्ट होता है जिसे कहते हैं CRS, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का डाटा सरकार एनुअल बेसिस पे केंद्र सरकार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के थ्रू इशू करती है। अब वो सेंटर के पास वो आंकड़ा कैसे आता है, नीचे डिस्ट्रिक्ट और फिर उसके बाद स्टेट लेवल से होते हुए ये आंकड़ा सेंटर तक पहुंचता है और वो CRS का डेटा हर बार इशू होता है। CRS में होता है कि कितनी डेथ एक साल में रजिस्टर हुई। अब WHO जब ये एक्सरसाइज करने बैठा कि कितनी मौतें 2020 और 2021 में हुई, तब न 2020 का CRS का आंकड़ा भारत से अवेलेबल था, ना ही 2021 का था। अब उसके पास रास्ता क्या था, तब तक भारत के 17 राज्यों से या तो राज्यों ने अपने स्तर पर, कुछ गिने चुने राज्यों ने अपने स्तर पर मौत का, अब ये जिस मौत के आंकड़े की बात कर रहे हैं ये सिर्फ कोविड नहीं, इसको ऑल कॉज मोर्टेलिटी बोलते हैं, ये सारी मौतों का आंकड़ा होता है। कुछ एक दो राज्यों ने अपने ही बेस, अपने सो मोटो बेसिस पे वो आंकड़े वेबसाइट्स पे डालती है, वो हमेशा होता है। और बाकी कुछ राज्यों से बहुत सारे पत्रकारों ने राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से वो स्टेट लेवल के मौत के आंकड़े निकाले। इस तरह जब RTI से और स्टेट के ऑफिशियल रिकॉर्ड से आंकड़े इकट्ठे हुए, तो वो इकट्ठे करते करते 17 राज्यों के वो आंकड़े इकट्ठे हो। अब उन 17 राज्यों के आंकड़े 2020 और 2021 के जब इकट्ठे हुए, उसके बाद उसकी मॉडलिंग की गई, WHO ने उसकी मॉडलिंग की। अब मॉडलिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मॉडलिंग एक साइंस है, बजाबता पूरी एक साइंस है जो कि हमेशा से चली आ रही है और पैंडमिक के कई और एस्पेक्ट्स में हम मॉडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद WHO ने उन 17 राज्यों का आंकड़ा इस्तेमाल करते हुए मॉडलिंग की और इस तरह वो इन आंकड़ों पे आया जो कि 4.7 मिलियन या 47 लाख का आंकड़ा अब वो बता रहा है। अब भारत का क्या ऑब्जेक्शन, भारत का कहना है कि मॉडलिंग नहीं होनी चाहिए थी। मॉडलिंग क्यों नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि CRS सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020 का आंकड़ा अब हमारे पास पूरा अवेलेबल है। पर ये आंकड़ा कब इशू हुआ, ये आंकड़ा इशू हुआ WHO रिपोर्ट आने के मात्र 2 दिन पहले। अब WHO जब रिपोर्ट इशू करने वाला है और उसके 2 दिन पहले कोई आंकड़ा पब्लिक डोमेन में आएगा, तो ऑब्वियसली उस डाटा का कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। इसीलिए जो मॉडलिंग के थ्रू WHO ने जो अपना डेटा बनाया था वो डेटा रिलीज किया। अब भारत का कहना है, या भारत के जो ऑफिशियल्स इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये मॉडलिंग में आंकड़ा जो डाला गया वो हियर से था। अब वो हियर से नहीं था क्योंकि या तो वो इन्फॉर्मेशन RTI के थ्रू इकट्ठी की गई थी या वो इन्फॉर्मेशन राज्यों के आंकड़े से आई थी। तो अब क्या RTI में दी गई जानकारी गलत थी या राज्य सरकारों ने जो जानकारी दी वो गलत थी, भारत ये कहने की कोशिश कर रहा है। ये हुई CRS 2020 की बात। असल जो मुद्दा है वो 2021 का है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि असल जो भारत ने जो सफर किया वो 2021 में किया जब डेल्टा की वेव आई। 2021 का तो CRS का डेटा अभी पब्लिक डोमेन में कहीं है ही नहीं। तो अब जब WHO को डेटा निकालना है 2020 और 2021 का, सीआरएस 2020 आप दो तीन दिन पहले इशू करते हैं, सीआरएस 2021 है नहीं, तो ऑब्वियसली वो जो 17 राज्यों का डेटा आरटीआई के थ्रू या स्टेट रिकॉर्ड्स के थ्रू इकट्ठा हुआ था उसके थ्रू मॉडलिंग करके ही किया जा सकता, और कोई रास्ता नहीं था। अब अगर ये कहते हैं कि देखिए भारत की सबसे हाईएस्ट मोर्टेलिटी है 47 लाख, अब जो WHO बता रहा है, पर भारत इकलौता देश है जिसने ऑन रिकॉर्ड अब तक 2 बार WHO के इन आंकड़ों की मजम्मत की। अभी तक किसी भी देश ने भारत के अलावा एटलीस्ट ऑन रिकॉर्ड WHO के आंकड़ों पर सवाल नहीं उठाया, ऑन रिकॉर्ड किसी भी देश ने नहीं उठाया। तो ठीक है, भारत कहता है कि हमारा सीआरएस का डेटा हमने भले अभी दिया पर वो बड़ा ही रोबस्ट है। अब वो सीआरएस का डेटा कितना रोबस्ट है आप इससे समझ लीजिए कि इसके पहले जब सीआरएस का आंकड़ा इशू किया जाता था तो ये बताया जाता था कि ये जो डेथ रजिस्टर हुई है ये कितने परसेंट है, डेथ रजिस्ट्रेशन 70% है, 60% है, 80% है, कितने परसेंट है। इस बार जो सीआरएस 2020 का आंकड़ा इशू किया गया उसमें वो कॉलम गायब कर दिया गया। हम नहीं जानते हैं कि कितनी डेथ परसेंटेज जो है वो रजिस्टर है। तो इसलिए हर तरीके से नकार देना सब कुछ हमें कहीं ले नहीं जाएगा। भारत का
ये कहना, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी, अभी मिस्टर भार्गव को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कौन सी कोरोना डेथ है कैसे माने ये क्लैरिफाई नहीं है, और जो अधिकारी थी वो ये कह रही थी इट्स एम्बिगस, एक जनरल एक हाइपोथेटिकल फिगर सब लेके चल रहे हैं, तो एक साफ परिभाषा तो कहीं पे भी नहीं है कोरोना की। अब अगर आपकी 10 दिन बाद मृत्यु हुई है, 2 महीने बाद मृत्यु हुई है, 6 महीने बाद मृत्यु हुई है कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से, तो डॉक्टर भार्गव खुद कह रहे हैं कि ये एक स्पेसिफाइड डेफिनेशन नहीं है कि कोरोना की वजह से डेथ हुई है। तो ये जो एम्बिग्युटी है ये सिर्फ हमारे यहाँ या हर जगह ही है?
आईसीएमआर ने खुद ने, जिसके डॉक्टर भार्गव मुखिया है, आईसीएमआर ने खुद ने कोविड डेथ की एक क्लासिफिकेशन, एक परिभाषा इशू की थी, और उन्होंने एक कट ऑफ डेट रखी थी कि अगर कोविड इन्फेक्शन के इतने दिनों तक मृत्यु होती है तो वो मृत्यु, अगर मुझे कोरोना हुआ है और मुझे हार्ट अटैक होता है पर उतने दिनों के भीतर अगर मेरी मृत्यु होती है तो वो मृत्यु कोरोना से गिनी जाएगी, वो हार्ट अटैक से नहीं गिनी जाएगी। ये परिभाषा WHO ने या बाकी जो देश थे उनसे गाइडेंस लेते हुए भारत ने खुद बना ली थी, और फर्स्ट वेव के दौरान ही बना ली थी। ये एम्बिग्युटी को एटलीस्ट थियोरिटिकली तभी रिमूव करने की कोशिश की गई थी। अब वो नीचे डाउन द लेवल ऑफ यू नो हॉस्पिटल्स वो कितना परकुलेट किया नहीं किया वो आप एक अलग, वो एक माजरा हो सकता है, पर ये परिभाषा खुद ICMR ने बना ली थी।
बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये भी समझना चाह रही थी, शरद जी आप भी हमारे साथ हैं, शांति जी भी हमारे साथ हैं, कि हमने जो इतना भयावह पूरे देश भर ने पूरी दुनिया ने देखा कोरोना काल किस तरह से आया, हमने अपनों को खोया, बंजोत ने किस तरह से हमें एक्सप्लेन करा है कि जो आंकड़े हैं हम सबके सामने कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई किसी ने खोया ही है जो ये पहली वेव्स आई। मैं ये समझना आपसे चाह रही हूं क्योंकि इसका जो असर था जो भयावह थी, भले ही सरकारों ने कुछ भी किया हो, तमाम राज्यों की मैं बात कर रही हूं, आंकड़े छिपाए हो, तमाम राज्यों ने छिपाए होंगे, एक दो से तो काम चलेगा नहीं। मैं ये जानना चाह रही हूं कि उसका तो असर हुआ नहीं, चुनाव आए चले गए, लोगों को अपने स्वास्थ्य का या अपने परेशानी का कुछ असर इस पे नहीं दिखता, ये क्या कारण है? क्योंकि अगर हम चाहें भी कि सरकार अपने, क्योंकि स्वास्थ्य बजट है उसको कम किया गया है, अब हम सरकार को चाहें भी कि सेवाएं दुरुस्त हों, अभी हाल फिलहाल में एक कार्यक्रम में दिखा रही थी एम्बुलेंसेज नहीं है, तमाम राज्यों से खबरें आती हैं कोई रेडी में कहीं लेके जा रहा है, ये कोरोना से पीड़ित नहीं, अब जिस तरह से बीमारियां हैं लोगों में, इलाज के लिए जो हमारी प्राइमरी चिकित्सा सेवा है वो बिल्कुल चरमरा गई है, उस लिहाज से सरकार सचेत होती नजर नहीं आती।
देखिए उसके पीछे बड़ा सिंपल सा कारण है निधि। देखिए जहां तक इसका सवाल है, सबने झेला, सबने तकलीफें उठाई, लोगों के घर के परिवार के सदस्य मरे, बीजेपी के MLA को मैंने कहते हुए सुना ऑन रिकॉर्ड कि यूपी में 90,000 विलेजेस हैं और कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पे कम से कम 8 से 10 लोग ना मरे, और ये बात सच भी रही होगी, मैं चाहता थोड़ा एग्जैजरेशन भी मान लें, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने उसको काउंटर किया, आपने देखा होगा कि इस ये जब चल रहा था उसी दौरान इलेक्शन के कैंपेन के बिगिनिंग में प्राइम मिनिस्टर ने यह अनाउंस किया कि साहब यूपी ने बड़ा कमेंडेबल काम किया है कोविड मैनेजमेंट, मतलब जो मिसमैनेजमेंट था उसको इन्होंने मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दिया बम्बार्डमेंट करके झूठ का पब्लिसिटी। देखिए ये पब्लिसिटी पे बहुत डिपेंड करती है ये रूलिंग डिस्पेंसेशन जो है, यूपी ने 6 महीने में 650 करोड़ पब्लिसिटी पे खर्च किया यूपी गवर्नमेंट ने, ऑफिशियली, ये तो उसके जरिए से जो पब्लिक के माइंड्स पे जो वो डाला कि नहीं साहब ये सब तो ठीक है, तो जो एक जो आप यहां तक इलेक्शन की बात कर रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने जीता वो इस झूठे कैंपेन की वजह से और लोग इसको बिलीव करने लगे। देखिए एक झूठ को आप हजार बार बोलेंगे तो आदमी अपने सच पे शक करने लगता है और वही हुआ इसमें, किसने नहीं देखा ये सब कुछ हुआ,
लेकिन
लोगों ने उसके बावजूद भी जो है ये सारा ये बड़ा सिस्टमैटिक कैंपेन चला, इसकी वजह से जीते। इसमें ये नहीं है कि पब्लिक के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, पब्लिक भूलने को मजबूर हो गई, ये ट्रेजेडी है।
तो शंटी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने तो इस तरह की स्थितियां देखी थी, तो क्या जो अपने दुख हैं, अपने अनुभव हैं, अपने परिजनों को खोना है चुनाव के दौरान लोग भूल जाते हैं, या ये एक अरसे के बाद इसका असर नहीं रहता?
आप मेरे से पूछ रहे हैं?
जी जी जी।
देखिए आप बार बार हम ये तो याद करते हैं कि डेथ हुई, लेकिन कारण क्या रहा, अलग अलग स्टेट में क्या सिनेरियो थी। अगर मैं जहां बैठा हूं इस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, आपने ठीक कहा अभी कि एम्बुलेंस जैसी चीज, उसके बाद ऑक्सीजन, यहां तक स्ट्रेचर नहीं, यहां तक वेंटिलेटर नहीं, और जब डेथ हो जाए तो डेड बॉडी वाले मोर्चरी बैग नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। और मैं एक बात ऑनलाइन खुलकर बोलना चाहता हूं, मुझे किसी बात का डर नहीं है कि जितने अच्छा काम एनजीओ ने किया है, जितना अच्छा काम डॉक्टर्स ने किया है, नर्सेज ने किया है, मैं सल्यूट करता हूं एम्बुलेंस ड्राइवर ने, पर जो हॉस्पिटल वालों ने उस समय लूट खसोट करी है, क्या किसी एक भी हॉस्पिटल के ऊपर एफआईआर हुई है आज तक? 25-25 लाख रुपए के बिल बनाए हैं इन्होंने,
उसके बाद
लाशें भी दी है इन्होंने लोगों की, लोग तरस रहे थे, अपने घर भेज दिए लोगों ने, और उसके बाद जब लाश मिलती थी तो मोर्चरी में एक एक घंटा बैठे, एक एक दिन बैठे, फिर उसके बाद डेड बॉडी लाने के 40-40 हजार रुपए लोगों ने शमशान घाट दिए। अगर दिल्ली गवर्नमेंट चाहती तो दिल्ली के अंदर 5,000 बसें डीटीसी की खड़ी थी, उसकी सीटें निकलवा देते, उसमें लाशें ढोते, उसमें पेशेंट ढोते, उसमें डॉक्टर ढोते, लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं करी। और प्रशासन की लापरवाही की वजह से, मैं सीधा सीधा कहूंगा कि इतना बड़ा, इतनी बड़ी राजधानी के अंदर लोग सुविधाओं के अभाव में मर जाए, उसके बाद लकड़ी नहीं थी हमारे पास शमशान घाटों में, कहीं दिल्ली से दिल्ली में आने का कोई साधन नहीं बन रहा था, और छोटे छोटे बच्चे 12-12 साल के अपने पिता की लाश लेके आ रहे हैं, बच्चियां लाश लेके आ रही हैं, 4-4 दिन लोगों की लाश घर पड़ी रही, कोई प्रशासन फोन उठाने को तैयार नहीं था। एम्बुलेंस का नंबर है, पुलिस का नंबर है, फायर ब्रिगेड का नंबर है, क्या लाश उठाने का कोई नंबर है दिल्ली के अंदर? मुझे बताइए आप, किसने उठाई लाशें? वो हमें पता है कि हमने 50-50 लाशें शहीद भगत सिंह सेवादल के वॉरियर ने घरों से उठाई हैं, सड़ी हुई लाशें उठाई हैं, और यहां तक कि चौथे पांचवे महल्ले पे वो 4-4 दिन लाशें पड़ी रही, किसी ने फोन नहीं उठाया। और अगर सबसे ज्यादा इस कोविड में किसी ने फायदा उठाया है, मुझे शर्म नहीं है कहने में, वो पैसे वालों ने उठाया है, किसी गरीब आदमी ने लूटमार नहीं की। 2,000 का इंजेक्शन अगर दिल्ली में 2 लाख का बिका, किसी गरीब आदमी ने नहीं बेचा वो। अगर 500 का सिलेंडर 50,000 का बिका, किसी गरीब आदमी ने नहीं बेचा। और वो 500 वाली एम्बुलेंस 40-40 हजार में दी गई, क्या किसी के ऊपर FIR रजिस्टर्ड की दिल्ली में? हर हॉस्पिटल के अंदर एक नोडल ऑफिसर था, क्या करा उस नोडल ऑफिसर ने? क्यों नहीं केस रजिस्टर्ड किए गए? मैं अभी भी कहता हूं इन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का दिल्ली में ऑडिट कराया जाए, और उस पैसे को लेके किसी राहत कोष में डाला जाए ताकि देश के काम आए। आज उन परिवारों से पीछे पूछिए जो साल बीत जाने के बाद भी 4-4 विधवाएं एक एक घर में बैठी हैं, वो कभी नहीं 200 साल तक नहीं भूलेंगे इस बात को। और हमारे जैसे छोटे छोटे वॉरियर जिन्होंने 22-22 दिन शमशान घाट में गुजारे हैं, हम तो नहीं भूल सकते जी वो हादसे को, हम तो अपने अपने दिलो जान में रखे हैं, हमारे ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आपसे बात करते हैं, हमें याद आती है उन बच्चों की, छोटे छोटे जो बेचारे लाश को रिक्शे में रख के ला रहे हैं, ऑटो में ला रहे हैं, कहां गई थी मुफ्त में सामान देने वाली सरकार, उस समय कहां गई थी? इन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम स्वास मुफ्त में दे रहे हैं? किसी ने नहीं कहा। एक कंसेंटर 25-25 हजार वाला 2-2 लाख का बेचा लोगों ने, क्यों नहीं पकड़ा उन लोगों को? कितने केस रजिस्टर्ड हुए? इन बातों का उठाइए, मैं तो एक बात कहूंगा खाली, बार बार इस बात पर चर्चा करना कि मौतें कितनी हुई हैं, मौतें क्यों हुई है, ये देखें कि अभाव के कारण, संसाधनों के अभाव के कारण मौतें हुई हैं। और जब इतनी बड़ी राजधानी में हो सकती है तो छोटे गांव में तो कोई साधन होगा ही नहीं जी, जब यहाँ लाश ले जाने का साधन नहीं है, जब यहाँ जलाने का साधन नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमें इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए बार बार कि जिन लोगों ने इसे दिवाली के रूप में लिया है, हमारे देश में दिवाली पे मिठाई के साथ डब्बा तोड़ दो तो जेल होती है। इन 25-25 लाख का बिल बनाने वाले हॉस्पिटल वाले, किसी को जेल हुई है? इनके ऊपर तो NSA लगनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इनको जेल में डालिए। इन्होंने बहुत बड़ा बहुत बुरा कार्य किया हमारे देश के लिए, लूटा है, खसोटा है, उन परिवारों के गहने तक बिक गए, घर बिक गए उनके जी।
बिल्कुल शंटी जी, आपने ये बहुत अहम मसला उठाया है, बहुत अहम मसला। और वाकई में क्योंकि आप लोग कोरोना वॉरियर्स थे, अब अंजोत आप भी कोरोना वॉरियर, जिन्होंने आपने हमें एक्सप्लेन करा,
मेरा ग्राउंड मरा भी है, एक रुपया नहीं दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको।
जी बिल्कुल, ये बहुत अहम है कि अब क्या अस्पतालों पर वो वाकई में ध्यान दिया जाएगा कि किस तरह से खसोटा गया या जिन लोगों ने खसोटा। बहरहाल हमारे समाज में स्थिति इस तरह से बन जाती है कि जब एक समय इस मौका ऐसा आता है तब हम लोग चर्चा करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन वाकई में स्वास्थ्य को लेकर हम सबकी कोताही हम सबके तरफ से होती है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान खींचना बेहद जरूरी है। आप लोग सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खास कार्यक्रम में इसके ब्रेक ले रहे हैं हम लोग, ब्रेक के बाद एक और अहम खबर आपको दिखाएंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे भूमि अधिग्रहण घोटाले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। गाजियाबाद की डीएम रही निधि केसरवानी को सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश भी दिया गया है। इसमें डीएम व अन्य अफसरों ने किसानों से सस्ते रेट पर जमीन अपने रिश्तेदारों को खरीदवा दी, फिर उसे कई गुना ऊंचे रेट पर सरकार को बिकवा दी थी। अधिकारी और उनके रिश्तेदारों ने कैसे किसानों से ठगी करके करोड़ों कमाए, देखिए रवीश रंजन शुक्ल की ये रिपोर्ट।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की शानदार सड़क बनाने के दौरान कई अधिकारियों ने धांधली से मोटी रकम कमाई। ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एनडीटीवी के पास मौजूद उस वक्त के कमिश्नर की जांच रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सप्रेसवे के लिए 2012 में जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन होने के बावजूद अधिकारियों के रिश्तेदारों ने किसानों से जमीनें खरीदी। उस वक्त के एडीएम के बेटे ने किसानों से 1,78,00,000 रुपए में जमीन खरीदी और कुछ ही दिन बाद इसका अधिग्रहण करीब 9,00,00,000 रुपए में करवा दिया गया। इसी तरह एक अमीन ने अपने रिश्तेदार के नाम से 3,54,00,000 रुपए की जमीन किसानों से खरीद कर उसे इन्हीं अधिकारियों की मिली भगत से करीब 15,00,00,000 रुपए में आर्बिट्रेशन करवा कर अधिग्रहित करा दिया गया। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर 2019 में एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन बुधवार को इस घोटाले से जुड़े अधिकारियों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई करते हुए ट्वीट किया, दिल्ली मेरठ और ईस्टर्न पेरिफेरल वे भूमि अधिग्रहण प्रकरण में तत्कालीन जिलाधिकारी गाजियाबाद को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू किया जाए, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई के आदेश और जांच आख्या होने के बावजूद कार्रवाई में अति विलंब करने वालों के खिलाफ निलंबन और विभागीय कार्रवाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री दफ्तर से हुई सीधी कार्रवाई के बाद प्रशासन इस मुद्दे पर फिलहाल बात नहीं कर रहा है।
दरअसल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे के लिए जमीन के अधिग्रहण की शुरुआत 2012 से लेकर 19 तक होती है और इसमें जो चार गांव हैं नाहल, कुशलिया, रसूलपुर और डासना, इनके गरीब किसानों से अधिकारियों के रिश्तेदार जमीन खरीदते हैं। कुछ किसानों ने जब शिकायत करने की कोशिश की इस पूरे धांधली की तो उनको बिचौलिया बताकर प्रशासन ने जेल में डालने की धमकी तक दे दी।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए अपने खास और चहेते लोगों को जमीन खरीदवाकर जिले में
भूमि अधिग्रहण में किस तरह घोटाला हुआ इसको जानने के लिए हम सबसे पहले नाहल गांव पहुंचे। यहां हमें 15 ऐसे किसान मिले जिनकी करीब 100 बीघा जमीन अधिकारियों के रिश्तेदारों ने कौड़ियों के भाव खरीदी। इन्हीं में से एक अब्दुल कादिर हैं, जिनकी करीब 12 बीघा जमीन 12,00,000 रुपए बीघा के हिसाब से अधिकारियों के रिश्तेदारों ने खरीदी थी।
हमें तो ये कह के लिए ही कि 12,00,000 का मुआवजा मिलेगा और वो भी 3 किस्तों में मिलेगा कि हम पे 2 नंबर का पैसा है, 1 नंबर का करना चाह रहे हैं इसे। हम पे जो है दलालों ने फोड़ रख दिए, आके हमें सेट करके हमारी जो जमीन खरीद ली।
और जब आपने जमीन बेच दी उसके कितने दिनों के बाद में आपको पता चला कि हमारी तो जमीन बहुत कीमती थी और बहुत
6-7 महीने में हमें पता लग गया कि जमीन हमारी बहुत कीमती है। मुआवजा उन्होंने उठा लिया 68,00,000 रुपए बीघा का
और आपको दिया 12,00,000।
हमें मिले 12,00,000 रुपए बीघे।
इन्होंने बताया हमारे पास में जो है ब्लैक मनी है, हम उसे वाइट करना चाह रहे हैं तो हमारा 1 नंबर का पैसा हो जाएगा।
हाँ।
तो हम तुम्हें इकट्ठा पैसा दे देंगे।
हाँ।
तो इसी जरिए हमने अपने चाचाओं के थ्रू उन लोगों ने चाचा से बात करी, हमारे चाचा ने हमारी भी मेरे जो है तीन भाई और एक मम्मी और एक मैं, चार आदमियों के हमारे भी वहाँ पर अंगूठे साइन कराकर हमारी भी जमीन दे दी, जिसमें के एक बहन और दो भाई मेरे नाबालिग भी थे, उनकी भी जो जमीन बची थी वो जमीन जो है इन्होंने वो भी ले ली हमारे पास, वो भी नहीं छोड़ी।
नाहल गांव से अब हम पहुंचे गुलावठी। 55 साल के लियाकत ने ही पहली बार जमीन अधिग्रहण में धांधली की शिकायत की थी, जिनकी भेजी गई चिट्ठी के आधार पर मुख्यमंत्री ऑफिस से ये कार्रवाई हुई। भ्रष्टाचार के खिलाफ 10 साल की लड़ाई के दौरान इनको कई बार धमकियां और मानसिक उत्पीड़न तक झेलना पड़ा।
जो भी किसान संतोष हम इनको 10% कमीशन दे देवा, मान लिया मुझे 1 करोड़ रूपये बना, मैं 10 लाख उसके घर दिया आया, तो मेरी आर्बिट्रेशन कर देवे है और ना तो 2 साल तक भी नहीं करे है। मैंने बहुत कही भी ऐसा कर लो वो कर लो, हमारे भाई है उससे खुद लिए। मैंने जब मजबूर में जब किसानों के खिलाफ अन्याय देखा जी, फिर मैंने इनके 20 महीना में पकड़े।
देश भर के अलग अलग इलाकों में सड़क बनाने के दौरान जमीन अधिग्रहण में धांधली की शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन ये शायद ऐसा पहला मामला है जहां कम पढ़े लिखे माने जाने वाले किसानों की शिकायत के आधार पर इतनी बड़ी धांधली की पोल खुली और खुद मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।